5415 पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज या फिर फोन कर सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग, अब इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम बहुत कुछ जानकारी जानेंगे, लेकिन यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर हम वापस आएंगे। रेडियो मधुबन 90.4 FM ब्रह्म कुमारी, इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुन रहे हैं आप।
गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि चतुराय गान प्राणाय गानात्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुक मनसे गुरु पूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरु विक्रमाय गुह्य प्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यगणक्षेत्रे साराय गीत तत्त्वाय गीत गोत्राय धीमहि गूढ गुल्फाय गन्धमत्ताय गोजय प्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे गेयचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रियकृते गायकाधीन विग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते प्रणयाय गौरी प्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रवीशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि
सभी का अभिनंदन है, स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग आबू। और आइए जानते हैं कबीर जी क्या कहते हैं। कबीर जी आज कहते हैं कि जीही जिवरी से जाग बंधा तू जनी बंधे कबीर, जासी आटा लोने जियो सो समान शरीर। अर्थ यही है कि जिस भ्रम में तथा मोह की रस्सी से जगत के जीव बंधे हुए हैं, है कल्याण के इच्छुक, यानी कि जो मानव कल्याण चाहते हैं अपने जीवन में, उसको कहते हैं कबीर जी कि है कल्याण इच्छुक तू उसमें मत बंध। नमक के बिना जैसे आटा फीका हो जाता है, नमक के बिना जैसे आटा फीका हो जाता है, वैसे सोने के समान तुम्हारा ये उत्तम नर शरीर जो है भजन बिना भी व्यर्थ जा रहा है। क्योंकि हम मोह माया में बंधे हुए होते हैं और इसको देखते हैं, उसको देखते हैं, पैसों को देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन अपने लिए जो पुण्य कर्म है उसको नहीं देख पाते हैं। तो इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि भजन बिना व्यर्थ जा रहा है। भजन का अगर सही मायने में हम अर्थ जान लेते हैं कि भजन किसको कहते हैं, अपने सद्गुण और परमात्मा की ध्यान कैसे किया जाए जो भजन के रूप में कन्वर्ट हो जाए, कर्म करते हुए भी हम भजन करें, अगर ये प्लान जो है, ये जो उपाय जो है, अगर हमें पता चल जाता है तो हम अपने जीवन में बहुत सुकून से रह सकते हैं, सुकून से काम कर सकते हैं, अशांति की कमी महसूस होगी, शांति बढ़ती जाएगी जीवन में जब हम जान लेंगे कि सच्ची मायने में भजन क्या है। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन जब आप सुनते हैं तो आपको सही मायने में जीवन जीने की कला भी आ जाएगी, क्योंकि हर प्रोग्राम के अंदर आप कुछ ना कुछ चीजें जरूर जानते हैं कि जीवन को कैसे जिया जाए, परमात्मा को ध्यान कैसे किया जाए, कर्म करते हुए भी कैसे उनको अपने सारे कर्म को समर्पित किया जाए। और जब हम परमात्मा को समर्पित करते हैं कर्म, तो हम गलत कार्य करने से जरूर कतराएंगे, जरूर उसको परहेज करेंगे और अच्छे कार्य करने के और आगे बढ़ते हैं। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4 FM।
चलती काठी देख के मन काठी मुस्काए, चलती काठी देख के मन काठी मुस्काए, मैं तो जल के राख भई, रोटी जग हंस खाए, रे मनवा काहे समझ ना आए, रे मनवा काहे समझ ना आए, रे मनवा काहे समझ ना आए, रे मनवा काहे समझ ना आए। मनवा काहे समझ ना आए, रे मनवा काहे समझ ना आए, रे मनवा काहे समझ ना आए।
अगर मनवा को समझ में आ ही जाता है तो सारा काम जो है आसान हो जाता है। एक दूसरे को जो हम दुख देते हैं वो देना भी हम बंद कर देते हैं। तो खैर अभी वक्त है खास मुलाकात सुनने के लिए, तो आइए सुनते हैं खास मुलाकात रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। मैं हूं गगन आप सबके साथ, और आज हमारे साथ एक बहुत ही विशेष गेस्ट हमारे जुड़े हैं, यू आर खंडेलवाल जी, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं, यानी कि अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं। पेशे से वो इंजीनियर हैं और उनका कंपनी है शार्प इंजीनियर्स। सर ओम शांति, आपका स्वागत है रेडियो मधुबन 90.4 एफएम में। सबसे पहले तो सर आपका एक दिन का एक कॉन्फ्रेंस का एक्सपीरियंस कैसा रहा?
बहुत बढ़िया रहा, मतलब सबसे बढ़िया तो आज का ही दिन है
जी,
कि मैं कभी 3:45 बजे 3:30 4 बजे नहीं उठो, आज मेरी अपने आप 4:45 बजे नींद खुली
जी।
रात को सब लोग बोल रहे थे बाबा को बोल के सो, तो मैं बाबा को बोल के सोया तो मेरी 4:45 बजे नींद खुल गई। दिस इज रियली सरप्राइजिंग।
ऑफकोर्स। ओके सर, सबसे पहले जानना चाहूंगा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कौन कौन है आपकी फैमिली में, थोड़ा कुछ उस बारे में बताइए।
बेसिकली मैं महाराष्ट्र से हूँ, विदर्भ करके रीजन आता है महाराष्ट्र में, अमरावती डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ। बहन भाइयों की फैमिली में मैं सबसे छोटा हूँ
जी,
और इंजीनियरिंग करते वक्त ही मैंने सोच लिया था कि मुझे नौकरी तो करनी नहीं है, मैं खुद का ही चालू करूंगा
जी।
पर स्टिल इंजीनियरिंग करते करते मैं 3-4 साल सर्विस किया है, मतलब वीडियोकॉन में किया है, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टाटा यूनिसिस करके बॉम्बे में
जी,
वहाँ 2-3 साल किया है।
मतलब आपने अपनी कंपनी शुरू करी उससे पहले आपने कितना एक्सपीरियंस किया कंपनीज में?
4.5 ईयर्स।
4.5 ईयर्स। ओके।
2.5 साल औरंगाबाद में किया है, देन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे टाटा यूनिसिस करके, उन्होंने मेरे को वहाँ जॉब मिला तो वहाँ पे 2.5 साल किया। बाद में रिजाइन देके मैं खुद का स्टार्ट किया
जी।
स्टार्ट किया मैंने जस्ट एक छोटी एक मशीन से स्टार्ट किया है
जी। तो सर कैसा था एक्सपीरियंस एक नई कंपनी स्टार्ट करने का, एक एम्प्लॉय से एक एंटरप्रेन्योर बनने का? यानी अभी तक तो आप किसी के अंडर काम करते हैं और अचानक जब आप बॉस हैं और लोग आपके नीचे काम करें, तो कैसा है वो एक्सपीरियंस एज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ एम्प्लॉय टू द लीडर?
खुद का बिजनेस, खुद का इंडस्ट्री चालू करना ये मेरा पहले से एम था। मैं सेटिस्फाइड नहीं था, मतलब सर्विस लाइफ में मैं कभी सेटिस्फाइड रहा
जी,
मतलब ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा मेरा, पर इंटरनली जिसको बोलते हैं
इंटरनल सेटिस्फैक्शन,
आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। तो मैं बहुत पीक टाइम पे, मतलब मेरा जब अच्छा टाइम था सर्विस में, दैट टाइम आई हैव लेफ्ट टाटा यूनिवर्सिटी, मेरे को फ्रांस भेजने वाली थी
जी,
फॉर सम मोल्ड्स, इंजेक्शन मोल्डिंग के मशीन के मोल्ड आते हैं इंस्पेक्शन और लेके आने के लिए, तो 1.5-2 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट लिखने वाले थे उसमें
जी।
मैं बोला 1.5-2 साल और मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं वैसे मतलब मेंटली आई एम कि भाई मेरे को सर्विस करना नहीं है, मेरा खुद का बिजनेस करना है
जी।
तो फिर मैं उस टाइम रिजाइन दे दिया। फिर फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप में मैंने एक मशीन लेके बिजनेस स्टार्ट किया, छोटा सा बिजनेस था, बॉस वगैरह तो खैर हम ही लोग वर्कर और हम ही लोग बॉस थे जब
जी जी।
तो धीरे धीरे बड़ा है मेरा, मतलब अभी आज मेरे पास करीब 50-60 मशीन है, बाजार तो वहाँ पे जो है रिक्शा और मोटरसाइकिल बनाते हैं औरंगाबाद में, उसके पार्ट्स देता हूँ मैं।
तो आप अभी रहते भी औरंगाबाद में?
हाँ, रहते भी औरंगाबाद में।
और फैमिली के बारे में कुछ बताएं, आपके बच्चे हैं?
हाँ, मेरे 2, एक लड़का एक लड़की है।
क्या कर रहे हैं वो अभी?
मेरा लड़का अभी जस्ट इस साल ही VIT वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वहाँ पे एडमिशन लिया है, मैकेनिकल ही लिया है।
अच्छा।
ही वॉन्ट टू कंटिन्यू विद दिस फील्ड, मतलब फिर भी मैं उसको 2-3 साल सर्विस कराऊंगा, देन आई विल टेक दिस फील्ड। और लड़की अभी 9th में है
जी।
लड़की भी मेरी मतलब भरतनाट्यम में डांसर है।
अच्छा।
लास्ट टाइम चाइना जाके आई और इस साल बल्गेरिया यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे ग्रुप डांस में जाके आई है। एवरी ईयर सो कहीं तो भी बाहर एक डांस का प्रोग्राम करके आती है।
मैं पहले तो अपने श्रोताओं को बताऊं कि एंटरप्रेन्योर मतलब कि कोई किसी नया बिजनेस स्टार्टअप होता है, अगर आप अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करते हैं, अगर आपके पास ओनरशिप है, अगर आप उस आप ही हैं जिन्होंने वो कंपनी स्टार्ट करी है, तो आप एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। जैसे जो मेडिकल की चीजें प्रैक्टिस करता है वो डॉक्टर होता है, वैसे ही जो अपना खुद का बिजनेस होता है उस ओनरशिप को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं और वो एंटरप्रेन्योर होता है। जी हाँ। तो सर आप जैसे एंटरप्रेन्योर खुद बने, हमारे कई सारे लिसनर्स ऐसे होंगे, कई सारे श्रोता ऐसे होंगे जो खुद एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आगे जिनके मन में होगा, तो आपके हिसाब से उन लोगों के लिए जो अभी सर्विस कर रहे हैं, उनको आगे अगर एंटरप्रेन्योरशिप करना है या अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना है, तो आपके हिसाब से क्या है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्या है वो जरूरी चीजें जो होनी आवश्यक हैं, वो चीजें होनी चाहिए?
आपका एक मन में पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं कुछ तो भी कर सकता हूँ
जी।
पहली तो सबसे बड़ी आपकी इच्छा, अगर आप, मेरी तो जैसा इच्छा थी कि मैं बिजनेस करूँ, नौकरी में मैं कभी सेटिस्फाइड रहा ना, तो वैसे ही लोग जो नौकरी में सेटिस्फाइड नहीं है वो बिजनेस में आ सकते हैं, उनकी इच्छा शक्ति पूरी होनी चाहिए, राइट अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए कि भाई अपॉर्चुनिटी ये यहाँ पे अभी अच्छा मौका है, तो आप अभी कूद पड़ो, और कूदना जरूरी है। आप मतलब तैरना जब भी सीख सकते हैं जब आप कूद जाएंगे
कूदेंगे पानी में।
मैं भी जब स्टार्ट किया तो पता नहीं, मेरे को भी मेरा फ्यूचर मालूम नहीं था, आया जस्ट मतलब मेरे को एक अश्योरेंस था कि मैं 20,000 रूपये महीना का लेबर जॉब जिसको बोलते हैं, मतलब वो मटेरियल वो कंपनी देती है अपन उनको बना के देते, 20,000 रूपये महीने का लेबर जॉब अश्योर किया था मेरे को, मेरा एक फ्रेंड था उसने, दैट्स ऑल, उसके भरोसे मैंने स्टार्ट किया है
जी।
और नाउ आई हैव टर्न ओवर अराउंड 12 करोड़ रूपीज, मतलब मेरा अभी जो टर्नर है वो 12 करोड़ रुपए है। आपका अगर इरादा पक्का हो इससे भी आगे जा सकते हैं, मैं भी इससे आगे जाने की सोच रहा हूँ, अभी मैं रुका नहीं हूँ।
तो मतलब कहीं रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते,
आगे बढ़ते जाना है। आपकी ये इच्छा होना चाहिए कि आपके अंदर काम करने वाले लोगों का भी आप हेल्प कर रहे हैं, आपके कुछ वेंडर हो सकते हैं जो आपको कुछ बना के दे सकते हैं, आप उनको भी हेल्प कर रहे हो।
बिल्कुल।
और एक ये ऑर्गेनाइजेशन, एक कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी के साथ आप आगे बढ़ते रहो। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आप सबको लेकर आगे बढ़ना है,
आगे बढ़ना।
रतन टाटा ने जैसा कहा था, मतलब आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको ऊंचा जाना है तो सिंगल जा सकते हैं।
You have to be a people's person if you want to go ahead.
Yes.
बिल्कुल। अच्छा सर एक बात बताएं, जैसी कि जब हम किसी के अंडर काम करते हैं तो हमें कोई आगे चैलेंजेस नहीं होते, कोई तकलीफें नहीं होती। आपको पता है कि भाई आपको 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, काम तैयार होगा, वो काम करना है, शाम को आना है। पर जब आप खुद अपना बिजनेस चलाते हैं, जब आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, तब चैलेंजेस ये आते हैं कि एक तो आपको खुद की अपनी परेशानी भी खुद हैंडल करनी है, वो खुद देखना है, जितने आपके नीचे काम